हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन आंची को लेकर अपने घर आ चुका था। पहले ही उसने गुस्से में उसे काफी कुछ कह दिया था। वो अब उसका दिल और नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो गेस्ट रूम में था। गेस्ट रूम में अमन बेड पर लेटा छत की सीलिंग देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी तेजोजी कमरे में आई। उन्हें देखकर अमन उठकर बैठ गया। दादी प्लीज, कम से कम आप तो समझिए, मैं इस टाइम कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं हूँ, अमन ने परेशान स्वर में कहा। तेजोजी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी माँ की तरह यहाँ तेरा सिर खाने आई हूँ? सगाई वाले दिन ही मैं समझ गई थी कि तुम दोनों के बीच कुछ तो है। मैंने ये शादी इंटेंशनली नहीं की है, ये एक एक्सीडेंटल मैरिज है। पर तेरे चेहरे पर तो कोई भी दुख और पछतावे का भाव नहीं है। अमन, मुझे तेरी आंखों में सुकून दिखाई दे रहा है जो उस लड़की के साथ होने पर तुझे महसूस होता है। फिर तो उससे दूर क्यों भाग रहा है? तेजोजी ने प्यार से कहा। आप मेरा ब्रेन रीड करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मेरे पास उसे कहीं और ले जाने का रास्ता नहीं था तो घर लाना पड़ा, अमन ने सफाई दी। शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन प्यार तो तू उसे करता है, उसे अकेले कमरे में क्यों भेज दिया? वो परेशान थी, उसे भी इस वक्त किसी की जरूरत है, तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसे गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और वो मुझसे नाराज है, तो जाकर मना ना उसे। तू है कि यहाँ खुद मुंह फुलाकर कमरे में लेटा हुआ है। तेजोजी ने जबरदस्ती अमन को बेड से उठाया और उसे बाहर जाने के लिए कहा। उनकी बात मानकर अमन अपने कमरे में जाने लगा। तभी तेजोजी ने पीछे से कहा, और इस बात को हमेशा याद रखना कि तू उससे प्यार करता है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना और ना ही उसका दिल दुखाना। दादी, मैं उससे प्यार? अमन तेजोजी की तरफ पलट कर बोला, पर तेजोजी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में ही कहा, बस बस, मुझे मत सिखाओ, मैं उम्र, एक्सपीरियंस और ब्रेन रीडिंग तीनों में ही तुमसे आगे हूँ, चल अब जल्दी जा। अमन को बाहर भेजकर तेजोजी कुछ देर वहीं बैठी रही। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो अमन के लिए खुश थी। वहां से अमन अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी चेतना जी ने उसे आवाज दी। मुझे पता था बिजी अपना जादू चला ही देगी, देख तो मान भी गया और अब अपने कमरे में भी जा रहा है, अब जल्दी से मेरे पास आ। अमन चेतना जी के पास गया। चेतना जी के हाथ में दूध का ग्लास था। अब ये क्या है? डोंट टेल मी मॉम, आप कोई फालतू सा टीवी सीरियल देखकर उसकी कॉपी करके मुझे इसके साथ अंदर रूम में भेज रही हैं? अमन ने उनकी तरफ आंखें तरेर कर देखा। बिल्कुल नहीं, रात को दूध पीकर सोने से नींद अच्छी आती है, ऊपर से उसने कुछ खाला भी नहीं होगा, चेतना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर भी मैं इसे नहीं ले जाने वाला, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमने डिनर साथ में किया था और उसने बहुत सारा खाना खाया है। अमन अंदर जाने लगा। चेतना जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। इसके बिना तो मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी, चेतना जी ने कहा। उन्होंने जबरदस्ती अमन के हाथ में ट्रे पकड़ा दी। अमन हाथ में ट्रे लेकर अंदर पहुंचा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया। वही आंशी बेड पर अपना लहंगा फैलाकर बैठी थी। उसने अमन को इस तरह देखा तो वो तुरंत बोली, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? देखो आगे मत बढ़ना। व्हाट? ये मॉम ने मुझे जबरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिया, अमन ने मुंह बनाकर जवाब दिया और उसे साइड में रख दिया। मुझे तुमसे बात करनी है आंशी। अमन उसके पास बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर पूरे बेड पर आंशी का लहंगा और दुपट्टा बिखरा हुआ था। इसे हटाओ, मुझे यहाँ बैठना है, ये मेरा कमरा है और ये मेरा बेड, तुम्हें जो भी कहना है खड़े होकर कहो या फिर उस काउच पर जाकर बैठ जाओ। देखो आंशी, बदतमीजी मत करो, ये मेरा कमरा है, सो चुपचाप यहाँ से खड़ी हो जाओ, सबसे पहले जाकर चेंज करके आओ, ये क्या पहन रखा है? अमन ने इरिटेट होकर कहा। अगर तुम्हें मुझे ऐसे देखकर इरिटेशन हो रही है तो किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, वैसे भी तुमने मुझे बहुत सुनाया है, उसके बाद मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, मुझे नींद आ रही है, कमरे की लाइट बंद करो और निकलो यहाँ से, आंशी ने दरवाजे की तरफ उंगली करके कहा। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे मेरे ही कमरे से निकालने वाली? ये मेरा रूम है। है नहीं मिस्टर दत्त, आज से ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मेरा राज चलेगा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, चुपचाप कोई कोना पकड़ो और सो जाओ। आंशी की बातें सुनकर अमन उसके तरफ हैरानी से देख रहा था। आंशी, मुझे काउच पर नींद नहीं आती है, तुम बेड खाली करो, मुझे यहाँ सोना है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें काउच पर नींद नहीं आती है तो जमीन पर गद्दा लगाओ या फिर आसमान में जाकर सोवो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ। आंशी ने रूखे तरीके से जवाब दिया, मुझे इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो अभी भी देर नहीं रही हुई है, वो रहा दरवाज़ा और बाहर जाओ। आई विश मैं जा पाता, दादी ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्हें लगा तुम अकेला फील कर रही होगी। मॉम ने जबरदस्ती तुम्हारे लिए मिल्क भेजा क्योंकि उनके हिसाब से तुम्हें भूख लगी होगी। तुम यहाँ मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे अमन बोल रहा था, तभी आंशी ने उसकी बात के बीच में कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने गाड़ी में मुझसे बात की थी, सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया था। तो क्या तुम बदला ले रही हो मुझसे? अमन उस पर जोर से चिल्लाया, हाँ बिल्कुल बदला ले रही हूँ और चुन चुन के बदले लूंगी। तुम्हारा जीना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आंशी जिंदल, एक सेकंड, आंशी जिंदल नहीं, मेरा नाम भी आंशी कपूर नहीं। अमन दूसरी तरफ गया और खुद से कहा, मन तो कर रहा है इसे उठाकर उस विधिक राणा के पास छोड़ कर आऊं, वो इसके सिर के बीचों बीच गोली मारे और ये लड़की चुप हो जाए। याद है ना मिस्टर दत्त ने क्या कहा था, मैं विधिक की कमजोरी हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। हाँ, जब मैं उसे ये बताऊंगी कि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है तो तुम्हें जरूर मार देगा। कहकर आंशी बेड पर आराम से लेट गई। आंशी से एक लंबी बहस के बाद अमन को मजबूरन काउच पर लेटना ही पड़ा, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने आंशी की तरफ देखा तो कुछ वैसा ही हाल उसका था, वो उस ड्रेस में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और बार बार करवट बदल रही थी। अमन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और काउच से उठा, वो अपने वार्डरोब की तरफ गया। उसे वहां आंशी के लायक कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसकी नज़र एक ओवरसाइज्ड बड़ी से टी शर्ट पर पड़ी जो काफी लंबी थी। उसने वो टी शर्ट निकाली और आंशी के पास जाकर बोला, चलो उठकर चेंज कर लो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आंशी ने हिचकते हुए जवाब दिया। हाँ मुझे दिख रहा है तुम कितनी ठीक हो। अमन ने आंशी को टी शर्ट पकड़ाई और वापस काउच पर जाकर बैठ गया। अब जब इतना सोच रहे हो तो थोड़ी हेल्प और कर दो, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पहना था, पीछे से खोलने में प्लीज हेल्प कर दो। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी और आंशी के पास गया, वो उसके ब्लाउज की डोरी खोल रहा था। आंशी के बैक पर एक बड़ा सा तिल था। ये क्यूट है, तुम्हारा बर्थ मार्क, अचानक अमन के मुंह से निकला। ये बर्थ मार्क नहीं, तिल है, आंशी ने जवाब दिया। फिर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अमन के सामने खड़ी हो गई। तुम क्या मुझे देख रहे थे, हद होती है यार, आंशी ने उसे खुद से दूर किया और वहां से बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। अमन का वो टी शर्ट उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक का था, उसे पहनने के बाद वो काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन जब वो वापस आई तब अमन आराम से बेड पर लेटा था। अच्छा तो इसलिए तुमने मेरी हेल्प की, तुम कितने बुरे हो, आंशी ने उसे घूर कर देखा। क्या करूं, करना पड़ता है, अमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उसने आंशी को काउच की तरफ इशारा किया, जाओ सो जाओ मिसेस कपूर। मुझे काउच पर नींद नहीं आती है, आंशी ने बच्चों सा मुंह बनाकर कहा। अगर तुम्हें काउच पर नींद नहीं आती तो जमीन पर बिस्तर लगाकर सो या फिर आसमान में, इट्स योर चॉइस, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो लाइट बंद करो एंड स्लीप वेल। अमन ने एक तकिया उठाया और अपनी आंखों पर लगा लिया। आंशी उसके पास आई और वो तकिया हटाकर बोली, प्लीज ऐसा मत करो, तुमने मेरे पापा को वादा किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे, क्या तुम अपने इस बड़े से घर के बड़े से कमरे के इस बड़े से बेड पर मुझे छोटी सी जगह नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकता, कहीं गलती से मैंने तुम्हें देख लिया या मेरा हाथ तुम्हारे हाथ को लग गया तो कल को फिर तुम मुझे कुछ और ही समझने लगोगी। ना बाबा ना, मुझे रिस्क नहीं लेना, हम दोनों एक दूसरे से दूर ही ठीक हैं। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी, बस कोने में लेटी रहूंगी, सोने दो ना प्लीज, आंशी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही थी। अमन ने हाँ में सिर हिलाकर उसे बेड पर सोने की इजाज़त दे दी। आंशी तकिया लेकर बेड के कोने में सो गई तो वहीं दूसरे कोने में अमन सोया हुआ था। दोनों के बीच बहस हुई थी पर दिल ही दिल में दोनों को ही अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में थे। अगली सुबह अमन की आंख खुली तो आंशी का एक पैर उसके ऊपर था। उसने धीरे से उसका पैर हटाया और उठने लगा। उसकी नज़र आंशी के चेहरे पर पड़ी जो आराम से सो रही थी। उसे देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग आंशी, अमन ने उसे उठाने के लिए जानबूझकर जोर से हिला दिया। ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करती, तुमने प्रॉमिस भी किया था मुझे हमेशा खुश रखोगे, फिर इतनी सुबह क्यों जगा रहे हो? आंशी आंखें मिचमिचाते हुए उठी। ट्रस्ट मी, आज तक मुझे अपने किसी भी प्रॉमिस पर इतना पछतावा नहीं हो रहा जिसने इस पर हो रहा है। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें एक अच्छी बहू होने का ड्रामा भी तो करना है। चलो उठो। अच्छी बहू अपने हस्बैंड की टी शर्ट पहनकर बाहर नहीं जाती है। जाओ, मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। हद है यार, इसे कुछ भी करने को कहो तो ये सारा काम मुझ पर ही डाल देती है। ठीक है, मैं मॉम से बात करके कुछ लेकर आता हूँ। तब तक सोना नहीं है, जाकर फ्रेश होकर आओ, कहकर अमन बाहर चला गया। उसके कहने के बावजूद वो फिर से आराम से सो रही थी। अमन वहाँ से चेतना जी के पास पहुँचा। उन्होंने सुबह सुबह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो उसे परेशान करने लगी। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी स्माइल करते नहीं देखा, जब देखो तुम्हारा मूड उखड़ा हुआ ही रहता था, चेतना जी ने कहा। बस भी कर चेतना, याद रख ये तेरा बेटा है, दोस्त नहीं, जो तू इसे इस तरह से परेशान कर रही है। तेजू जी के डांटने पर चेतना जी चुप हो गई। फिर वो अमन से बोली, तुम बताओ अमन, सब ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है, बस मुझे वो आंशी के लिए कपड़े चाहिए थे, अमन ने कहा। अब तू कपड़े मांगने के लिए हमारे पास क्यों आ रहा है? जब हम तुम्हें लावण्या के लिए शॉपिंग करने के लिए कहते थे तब तो तुम्हें टाइम नहीं था। वैसे उसका तो मुझे पता नहीं, पर आंशी के लिए मैं अपनी नई साड़ियों के कलेक्शन से कुछ दे सकती हूँ, चेतना जी ने कहा और अंदर से दो तीन साड़ियाँ लेकर आईं, उसके साथ ज्वेलरी भी थी। अमन उसे लेकर अंदर पहुँचा तो आंशी अब तक सो रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, तुम मुझे ठीक से नहीं उठा सकते, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की क्या ज़रूरत है? उसके मुंह से बटरफ्लाई सुनकर आंशी मुंह बनाते हुए उठी। उसने अमन के हाथ से साड़ी छीनी और बाथरूम में चली गई। अमन बाहर उसका वेट कर रहा था। कुछ देर बाद आंशी तैयार होकर बाहर आई। उसने एमरल्ड ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। बाहर आकर आंशी ने कहा, सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे और भी काफ़ी सामान चाहिए, मैं तुम्हें लिस्ट बना दूंगी, तुम मुझे ला कर दे देना। एक्सक्यूज मी, मैं कोई तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए सामान लेकर आऊँ, तुम्हें जो चाहिए वो मॉम को बता देना, वो मंगवा देगी या खुद जाकर खरीद लो। आंशी अमन के पास आई और उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? मेरी सेफ्टी का सवाल है, कहीं विधिक ने मुझे देख लिया तो वो मुझे उठाकर ले जाएगा। कैसे पति हो तुम, पहले तो प्रॉमिस कर देते हो खुश रखूंगा और फिर छोटी छोटी चीजें भी नहीं लाकर दे सकते। आंशी आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले अमन उसकी बात को अनसुना करके बाहर चला गया। उसके ऐसा करने पर वो कमर पर हाथ रखकर उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। मेरी बात इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मिस्टर सीक्रेट एजेंट, अभी बताती हूँ तुम्हें। आंशी ने जल्दी से अपने आप को थोड़ा बहुत तैयार किया। वहाँ ज्यादा सामान नहीं होने की वजह से वो ठीक से तैयार नहीं हो पाई। उसके बाल भी सही तरीके से सेट नहीं हुए थे। वो इसी तरह बिना मेकअप के बाहर गई। क्या आपको भी लगता है कि अमन ने आंशी के पापा को उसे हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस करके सही किया? पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा। आज का पाठ जानबूझकर लाइट रखा था ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। बाकी मैं तो कभी किसी को खुश रखने का प्रॉमिस नहीं करने वाला, आंशी जैसी लड़की को तो कभी भी नहीं। क्या पता खुद की खुशी के लिए वो मेरी जान ले ले।